اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز سے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک ہمسائے کے حالات دوسرے ہمسائے سے چھپ ہی نہیں سکتے۔ جب پانچ وقت اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کی خیریت پتہ چلتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور مسجد میں حاضر نہیں ہوا تو اس کا پتہ چلتا ہے۔ یوں دوسروں کے حالات اور ضرورتوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان یا غمگین ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کا غم بانٹ لینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ اپنے دن میں 5-10 منٹ ضرور ایسے رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا دکھ سنیں، شیئرنگ کریں، آپ ان کو کمپنی دیں۔ یقین کریں یہ اتنا بڑا بونڈ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے کسی سے ایڈوائز لینا چاہتا ہے، تسلی لینا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اکیلا بیٹھ بیٹھ کر اپنی الجھنوں کو سلجھا کے تھک چکا ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا گنجل پڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دماغ موف ہوتا ہے۔ اچھا، حالات چونکہ سب کے ایک جیسے ہیں تو سارے گھر والے بھی عموماً چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کس سے پوچھوں؟ آپ پوچھئے۔ دیکھیے، میں اور آپ باتیں تو بہت بڑی کر رہے ہیں نا، ہمارے نیبر میں نان مسلم رہتی ہوں، کیا میرا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کبھی ان کو بھی وقت دیں؟ کوئی کیک بنا کر، کوئی چار بسکٹ پکڑ کر ان کو بیل کر کے دے دیں، یہ میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں، بلا لیں اندر تو بیٹھ جائیں، نہ بلائیں تو آ جائیں، اگلے ہفتے پھر کوئی چھوٹی سی چیز لے لیں، وہ خود آپ کو کہیں گے اندر آ جائیں۔ یقین کریں ہمارے ارد گرد بڑے دکھی لوگ ہیں اور تنہائیوں کے مارے میں اداس لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی کے لیے کچھ بات کرنے کا۔ کر کے دیکھیے، صرف 5 منٹ، اپنے گھر والوں سے بھی دکھ سنیں۔ بچے سے پوچھو، سناؤ بیٹا کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ شوہر سے پوچھیے، آج کیسا رہا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بیوی سے پوچھیے، سارا دن کام کرتی ہیں، آپ بیٹھیں ذرا اپنے دل کی باتیں تو کریں، اداس تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ یہ جو 2-4 منٹ ایک دوسرے کا دکھ سکھ سننا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو انسان دوست بناتا ہے اور آپ حقوق العباد پوری کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ اگر کسی کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے تو اس کو قرض دے دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے، ہمارے ارد گرد بہت سارے مجبور لوگ ہوں گے، ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد ہوتا ہے، اگلے کی مجبوری ہے کہ ان کو چاہیے، لیکن ہم نہیں دے پاتے۔ اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ دراصل یہ نماز ہی کے ثمرات ہیں جو صدقہ، زکوٰۃ، خدمت، آپس میں ایثار و محبت، اتحاد و یگانگت، دوستی، ممتا بھری شخصیت، الفت اور ہمدردی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح نماز ایک دوسرے کی خبر گیری، میانہ روی، دھیمے پن اور نرمی کا مزاج پیدا کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمائے، ان اللہ رفیق وسیحب الرفق ومن حرم الرفق حرم خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نرم خوں ہیں، سافٹ اسپوکن، سافٹ کہہ لیجئے، اور نرم خوئی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو نرمی مزاج سے محروم ہو گیا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لیں، میرے اندر نرمی ہے؟ اور نرم چیز ہمیشہ فائدہ دے گی آپ کو۔ آٹا نرم ہوتا ہے تو گنتا ہے، گوشت نرم ہوتا ہے تو کھانے کے قابل ہوتا ہے، سبزی گلتی ہے تو آپ کو صحت دیتی ہے۔ جو انسان نرم ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے وہ خیر کثیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں 10 سال کا تھا جب مجھے میری والدہ آپ کی خدمت میں چھوڑ گئی، میں 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، اکثر مجھے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی تھی جو آپ کے مزاج، طبیعت اور پسند کے خلاف ہوتی تھیں، لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت سلائڈ تھی کہ جس میں حضرت انس کا یہ کال تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں بھیجتے کسی کام کے لیے اور میں نہ کر کے آ پاتا، ہوتا ہے نا اکثر بچوں کو آپ بھیجتے ہیں کہیں وہ کام نہیں ہوتا، ملازموں کو بھیجتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب میں کسی کام کو کر نہیں پاتا تھا اور ہوتا نہیں تھا تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی کیا کہتے، ما قدر من اللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، یعنی کہ تم گئے ہو کام نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسے تھا۔ ہم ایسے ہیں، ہم تو آگے سے اتنی لمبی بحث کریں، کیا کریں وہ کریں، खुलासा क्या निकला सारी बात का? अखलाकी बुराइयों में पहली वजह हुब्बे नफ्स थी, नफ्स की बुराई, नफ्स से मोहब्बत। इसका इलाज नमाज में। कितना आसान इलाज है, 5 दफ़ा आप दिन में डॉक्टर के पास जाएं और फिर आपको सेहत ना मिले? हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपको मुझे इस बात की फिक्र लग जानी चाहिए कि मेरी नमाज मेरे अंदर नरमी क्यों नहीं ला रही। अच्छा, इसके लिए कोशिश करें। बाज़ दफ़ा पोज भी देना पड़ता है, रोना नहीं आ रहा ना, रोने की शक्ल बनाए। ऐसी जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ें कि जहां आपकी तवज्जो और किसी जगह ना जाए। मैंने एक और चीज़ फील की कि ओपन एयर में नमाज पढ़े। हालांकि पसंदीदा तो ये ना कि एक औरत छुप के पढ़े घर में, लेकिन रात की कोई नमाज, मगरिब की, ईशा की, फजर की, ओपन एयर में पढ़े। और कुछ नहीं तो छत खुली हो। आप फितरत के साथ अपने आप को टच करें, ठंडक, हवा, गर्मी, सर्दी का एहसास आपको अल्लाह के होने का एहसास दिलाएगा। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल माहौल में जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, नरम नरम जाए नमाजें हैं, कूजी कूजी कमरा है, तो हम दुनिया की चीज़ों में खोए रहते हैं। तो नमाज से नफ्स को तोड़ेंगे। 5 दफ़ा तो नफ्स टूटता है ना नमाज की वजह से। नींद छोड़ के फजर पढ़ते हैं ना, हुब्बे नफ्स का मतलाशी कभी फजर नहीं पढ़ सकेगा। ईशा क्यों मुश्किल लगती है? थक गए हैं, सारे दिन के टूट गए, हुब्बे नफ्स है। जोहर खाना लगा, भूख लगी है, अब नमाज पढ़ू भाई। असर अब नींद आ गई है, कैलूला चाहिए। मगरिब दिन जा रहा है, पहले ही काम पूरे नहीं हुए। बरकत तो है नहीं दिन में क्योंकि लेट टू आप उठे, सो सो के आपने वो वक्त गुजार दिया जिसमें खैर थी। नतीजा क्या निकला कि 5 वक्त की नमाज चेंजेस लाती हैं। आप देखिए, नमाज में एनर्जी मिलती है, यही एनर्जी बाद में आपको नेकियों के काम करने में मदद देती है। फजर से एनर्जी ली, जोहर तक कितने नेकियों के काम किए, टैंक फिर खाली, फिर जोहर पे फिर आप जाके गाड़ी को फिलअप कराते हैं, तो असर तक भाग भाग के नेकियां करते हैं, तो असर तक फिर टैंकी कम हो रही थी। वही लोग दिल से नमाज पढ़ते हैं जो एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में नेकियों वाले काम करते हैं, ताकि दिल ना भरे और से और एनर्जी मिले। तो अपनी नमाजों के पीछे लग जाए, यकीन करें, हर वो तरीका इख्तियार करें जिससे आपको नमाज में मजा आए। इंशाल्लाह आपके अंदर से नफ्स ख़त्म होगा। फिर इसी तरह हुब्बे नफ्स का इलाज नमाज के साथ तो है ही है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। नफ्स के खिलाफ काम करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कॉल याद आ रहा है, जो चाहे खा लो, ये इसराफ है। हम घर बैठे एकदम दिला तो पकौड़े खाते हैं, 2 मिनट में बेसन घोल घाल के बैठ जाएंगे, सब कुछ तो घर में, और आधे घंटे में गरम गरम पकौड़े खा रहे होते हैं। वो कहती है, जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहता है ना, मैं ये खाऊं, और तुम खा लो, तो तुम इसराफ कर रहे हो। हज़रत आयशा को अल्लाह के नबी ने एक दिन में 2 बार खाते देखा, तो क्या कहा आयशा, क्या तेरा यही शुगल रह गया कि तू हर वक्त खाती ही रहे? हम तो 2 दफ़ा खाएं तो हमें तरस आता है कि हमने 3 दफ़ा नहीं खाया, सुबह ही शाम खाते हैं जी, तो जन्नत में भी सुबह शाम ही मिलेगा इंशाल्लाह। फिर इसी तरह आप देखें कि हुब्बे नफ्स का इलाज नफ्स पे चोट डाले। हमारे असलाफ जो थे ना, पुराने लोग, वो अपने नफ्स को मुखातिब किया करते थे, ए नफ्स तू तो मुझे जलील कर देगा। शीशे में खड़े होकर ना खुद से बातें किया करें, अपने अंदर को सुनाए, तुम हो क्या, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारे हाथ में ताकत कितनी है। जूं ही आप इस तरह खुद को 2-4 लफ्ज बोलेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर अपना बुत जो है ना, वो टूटता हुआ महसूस होगा। अपनी जात पे पैसे लगाने छोड़ दें, बांध लें दिल को, मैंने इस मट्टी के बुत पे कोई नहीं लगाने, पता नहीं कब तक जीना है, खाम खा अपने आप पे लगाऊं। मैं सोचती हूँ हम अपने आप को ठीक ही कराते रहते हैं, रेनोवेशन में ही हमारा वक्त गुजर जाता है, और दुनिया से जब जाएंगे, पूरे नए भी हो चुके होंगे, तो जाएंगे तो कब्र में ही ना। कम से कम तवज्जो खुद को दें, डॉक्टर्स का रुख कम से कम करें, बुटीक्स, पार्लर्स और न जाने क्या कुछ, आप देखिए कि जब लोग अपने नफ्स के पीछे पड़ते हैं, मुझे इस दफा किसी से पता चला कि बालों को सीधा कराने के लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपए देते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, होगा क्या, बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। और उस बालों के ऊपर जो वो जुल्म और वो बर्बरियत के तूफान गिराते हैं ना, कि वो बाल बोल सके, तो मेरा ख्याल है वो माफी मांग ले कि हमें माफ कर दो, हम आइंदा तुम्हारे सर पे नहीं उगेंगे। मैं नहीं कहती करो, मैं तनकीद नहीं कर रही, लेकिन मैं ये नफ्स की पूजा के तरीके बता रही हूँ। आप इतना पैसा लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये बालों की वेव्स खत्म हो जाए, तो कुछ के वेव्स हैं तो वो तो आप डलवा रहे होते हैं, बस दफा बस जो है ना वो नहीं चाहिए। कभी पार्लर्स वालों को जाके देखें, वो लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ख्वाहिशें बिकती हैं। मैं किसी जगह थी तो मतलब मेरी आंखों देखा वाकया, मैंने देखा कि एक सिस्टर थी तो बैठी हुई है, तो आई अंदर तो कहती हैं मेरी भवें बना देना। तो वो जो लड़की थी, पार्लर नहीं था उसका, ऐसे ही थी एक जैसे हेल्प करती है, तो वो कहती मेरी बहुत अच्छी बनाना, बड़ी कॉन्शियस थी जो आई है। फिर कहती खुद ही बातें, कहती असल में मैं उम्रे पे जा रही हूँ ना, मेरा तो वो वैसे ही दम घुट रहा था सोच के। तो फिर मैंने कहती हैं और जगह की जब इतनी तैयारियां करते हैं तो अल्लाह के घर जा रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि प्यार से जो थी, मैंने कहा कि अल्लाह के घर तो आप ऐसे भी चली जाए, उसको अच्छा ही लगेगा ना। मैंने कहा शायद इसे इतनी बोली है, इसको पता ही नहीं है बेचारी को कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सिस्टर क्या आप इतनी दूर जा रही हैं, तो अगर आप ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहती हाँ पर फिर वो बुरा लगता है ना ऐसा मुँह, उसको पता थी ये बात कि हमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन वो उसको बार बार यही कह रही थी कि मैं चूँकि उम्रे पे जा रही हूँ तो आम से भी अच्छी बनाना मेरी, फिर वैसे भी इतने दिन मुझे बनाने का मौका नहीं मिलेगा। नफ्स नहीं मरा, हुब्बे नफ्स। अब ये कोई तनकीद नहीं है, आप अब इस पे आप उल्टे सीधे सवाल सोच लें, मेरे खिलाफ बातें सोचें, मैं ये नहीं कह रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप खुद अच्छे बने, आप अपनी जिस्म की सेहत की, अपनी शक्लो सूरत की हिफाजत करें, पर इसको बुत ना बनाएं, अपने लिए करें जो दिल करता है। सेहतमंद रहिए, फ्रेश लगिए, खुश लगिए। आप शोपीस ना बने कि सिर्फ लोगों में आप एक स्टैचू बनकर फिर रहे हैं और लोग कह रहे हैं क्या खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर वो काम छोड़ें जिससे आपका नफ्स फूलता है। आप कहते हैं कि नफ्स जो होता है ना ये गुब्बारे की तरह फूलता है। अरबी की एक कहावत है कि नफ्स की मिसाल दूध पीते बच्चे की तरह। जब माँ ने अपने बच्चे का दूध छुड़ाना होता है ना, एकदम छुड़ा देती है। कुछ माएँ होती हैं वो कहती हैं हाय नहीं रो रहा है, बस अभी थोड़ा सा इसके मुंह को लगा दूँ। जब ऐसे करेगी ना तो बच्चा और ज़्यादा रोएगा, और जो माँ कहती है अब नहीं देना तो बच्चा एक दिन रोएगा, थोड़ा रोएगा, फिर सब्र आएगा। तो वो कहते हैं कि गुनाह छुड़ाना है ना एक झटके से छोड़ दो। क्या आप ऐसे नहीं, कई लोग जानते कई सालों से कोशिशें करें हमने ये आदत छोड़नी है, आज तक तो नहीं छुट्टी। हमने पर्दा करना है, आज तक तो नहीं हुआ। हमने ये काम करना है, नहीं हुआ। नफ्स है, कुचलें इसको, लताड़ें इसको, इसलिए कि यही बंदे को कयामत के दिन शर्मिंदा करेगा। कुरान में आता है या हसरत अला नफ्सी, लोग उस दिन कयामत के दिन अपने पर रहम खा रहे होंगे, हाय अफसोस मुझके मेरे नफ्स पे। मा फर्रत तुफी जम बिल्ला, सूरत जुमर की आयत है कि मैंने जो अल्लाह के मामलों में कमी बेशी की, या हसरत, मुझे हसरत है अपने ऊपर, अफसोस है। तो नफ्स के बुत से निकलें, इसको एक कारामद मशीन बनाएं, साफ सुथरा रखें, फ्रेश हों, रोज शावर लें, अपने आप को बिल्कुल एक प्रोएक्टिव शख्स बनाएं और जिंदगी के हर दिन से काम लें। ना सुस्त रहने का वक्त है इस दुनिया में, ना बेकार रहने का वक्त है, ना सोने का वक्त है। माल के लिए आप कोई काम करेंगे ना, आप सुकून के लिए वो काम शुरू कर दें। फरागत और बेकार जिंदगी, याद रखिए, नफ्स को मोटा कर देती है। इतने मसरूफ हो जाएं कि आपको होश भी ना रहे कि मेरा हाल क्या है। हाल ना पूछें कभी सुबह उठ के अपना, आज क्या हाल है मेरा, नहीं। जब आप इंशाल्लाह अपने ऊपर थोड़ी सी सख्त नजर रखेंगे ना, तो नफ्स का बुत टूटेगा। तो एक बुराई जब निकली, 1/3 ऑफ अखलाक विल बी सेटल डाउन इंशाल्लाह। आज से अपने ऊपर चेक लगाएं, मेरी कौन कौन सी अखलाकी बुराइयां मेरे खुब्बे नफ्स की वजह से हैं, गीबत ताना इल्ज़ाम दूसरों को डिस्कस करना इधर उधर झांकना ताकना नहीं आई कैंट मैं इनसे भी खराब हूँ। आपको क्या पता अल्लाह की नज़र में हमारा क्या मुकाम है। आप दूसरे को रगेद रहे हैं बेकार देखो पोहड़ देखो सुस्त देखो गंदी। हम औरतों की आदत होती है अपनी दोस्तों पे कमेंट्स दे रहे होते हैं अपने ही रिश्तेदारों को बुरा भला कहते हैं। भाई वो तो इतना कुछ है तुम बताओ कि तुम क्या हो अल्लाह की नज़रों में। तो इंशाल्लाह जितना अपने ऐबों पे नज़र पड़ेगी ना दूसरों से हम पीछे होंगे। अब एक बड़ी सी मुसीबत पे हमने काबू पा लिया नफ्स की मुसीबत। दूसरी वजह क्या थी हुब्बे माल। आइए थोड़ा इसका भी इलाज ढूंढते हैं कि माल की मोहब्बत दिल से कैसे निकालें। ज़कात के ज़रिए से। अब यहाँ से आपको ये भी समझ आ रहा है कि जो नमाज रोज़ा हज ज़कात ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये असल में ट्रेनिंग सेशंस हैं। अगर ये दुरुस्त तरीके से होते हैं ना तो फिर इसका असर ज़िंदगी में आता है। ज़कात कैसे पाक करती है थोड़ा सा पढ़ते हैं। पेज नंबर बुक के हिसाब से 85। ज़कात और हुब्बे माल। ज़कात क्या है? जब पता चल गया कि फलां शख्स ज़रूरतमंद है तो अब इसकी ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी हो गया। फलां शख्स बीमार है तो अब इसकी इयादत करते हुए इसके इलाज का बंदोबस्त करते हैं। फलां शख्स मकरूज है तो अब इसका कर्ज अदा करते हैं। या कोई शख्स किसी झूठे मुकदमे में फंस गया है तो इसकी गर्दन आज़ाद करवाने की कोशिश करते हैं। ये ज़कात का अमल है। कुरान मजीद भी ज़कात के जो मद्दात मद्दात क्या होते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स यानी किस किस मद में ज़कात लगती है किस किस को ज़कात दी जाती है वो भी तो यही है कि हर इंसान की जो ज़रूरत है इसे पूरा कर दो। ज़कात इंसान को हुब्बे माल से पाक करती है। ज़रा अपने कमाई में से आप 2.5% दे देते हैं तो माल की मोहब्बत निकलेगी ना। जैसा कि ज़कात के लफ्ज़ी मानी पाक करने के होते हैं यानी माल को पाक करना और दिल को माल की मोहब्बत से पाक करना। इसको हाईलाइट करें। दो तरह से पाकी का काम करती है ज़कात। माल को पाक करती है आलाइशें उतर जाती हैं कोई लेन देन की कमी बेशी थी कुछ ना कुछ गड़बड़ थी अल्लाह ताला उस माल को पाक करता है। और दूसरा जब अपने हाथ से देंगे तो माल की मोहब्बत दिल से निकलेगी। इसीलिए इरशाद बारी ताला है वमिम रज़क़नाहुम युनफिकून। जो रिस्क हमने इनको दिए ये जो हम मैंने इसको हाईलाइट करें हमने उनको दिया इसमें से खर्च करते हैं तो उसी के दिए हुए में से अगर खर्च कर देंगे तो हमने कौन सा एहसान किया किसी पे। मुत्तकीन की सिफात में से एक सिफत यह है कि वह अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खुले हाथों दूसरों पर खर्च करते हैं। एक और जगह इरशाद बारी ताला है अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया करो। हदीस शरीफ में आता है या इबन आदम अनफिक युनफक अलैक अनफिक युनफक अलैक ए आदम के बेटे तू दूसरों पे खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूँगा। सोचे ज़रा कितना वादा सच्चा अल्लाह का। आप में किसी पर खर्च करेंगे तो कितना करेंगे जितनी हमारी औकात है जो हम कर सकते हैं। जब अल्लाह हम पे खर्च करेगा तो क्या होगा। और ये बात दिल से बांध लें। मैं अक्सर लोगों को यही मैसेज देती हूँ कि आप अल्लाह के काम करने शुरू हो जाओ अल्लाह आपके वो काम करेगा जो आप खुद कर ही नहीं सकते। और इस हदीस को आप अपने लिए एक मेयार बना लें ए अल्लाह मैं तुझ पे लगा रही हूँ तू मुझ पे लगाना। अल्लाह आपकी बीमारियाँ ख़त्म कर देगा क्योंकि आपने अल्लाह के रस्तों में लगाया। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों इसको बीमार ना करना इसने जो डॉक्टरों को देना था ये तो पहले ही लगा चुके अल्लाह के रस्तों में। इसीलिए आपको कहते हैं कि सदका बंदे को मुसीबतों से बचा लेता है। तुम खुले हाथों से दूसरों पे खर्च करो मैं खुले हाथ से तुम्हें रिस्क दूंगा। और हदीस में कि मा सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैयन कत्तुन फकाला ला। कभी ऐसा ना हुआ कि आपसे कोई चीज मांगी गई हो यानी सवाल किया गया हो और आपने वो ना की हो ना दी हो यानी हमेशा देते थे। आपने फरमाया अल खल्कु इयालुल्लाह फहब्बल खल्क इलैयल्लाह मन अहसन लियालिही। मखलूक सारी अल्लाह का कुंभ है। अल्लाह के नज़दीक ऐसी मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब शख्स वो होता है जो इसके कुंभे के साथ हुस्न सलूक करे। अच्छा अल्लाह की औलाद तो नहीं है लेकिन अल्लाह चूंकि सबका टेक केयरर है ना तो अल्लाह के बंदों में से आप जिसको भी देंगे ना तो अल्लाह तक पहुँचेगा। ज़कात इंसान के अंदर से हुब्बे माल ख़त्म करके कनात पसंदी पैदा करती है। इंसान थोड़े पर सब्र करता है और ज़्यादा पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और दूसरों के हकूक अदा करता है। इसमें हिर्स और तमा नहीं होती बल्कि हिल्म और बुर्दबारी होती है। इसकी आंखों में दूसरों के लिए हया होती है और जो कुछ इसे अल्लाह ने दिया होता है इस पर शुक्र कनात करता है। वो अल्लाह ही पर भरोसा करता है। इसे अल्लाह के इस वादे पर भरोसा होता है कि अगर हम अल्लाह की राह में वुसअत कल्बी के साथ खर्च करेंगे तो अल्लाह हमें मजीद नवाजेगा। क्या पता चला? अल्लाह के रास्ते में देने से दिल से माल की मोहब्बत निकलती है। चलें जरा अपना एक छोटा सा हम जायजा लेते हैं। कब, कितना, क्या अल्लाह के रास्ते में दे सकती हूँ? हम तो बहुत सारी जमा तफरीक करेंगे ना पहले से। एक वाक्या मैंने अभी संडे को भी सुनाया है दर्स में, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सुना होगा, पूरा नहीं सुना होता। मैं अपने लफ्ज़ों में सुना देती हूँ आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आता है। एक यतीम लड़का है, वो और उसका हमसाया सामने है। वो यतीम लड़का है, कहता है कि अल्लाह के नबी, मेरा छोटा सा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाड़ लगा रहा था ताकि चार दीवारी लग जाए और दूसरे से अलग कर दूं। उस बाड़ की राह में इस मेरे हमसाये का एक दरख्त आता है। अब अगर मैं दीवार खींचता हूं तो वो दरख्त मेरे इलाके में आ रहा है, और अगर मैं फिर दीवार को हटाऊंगा तो मेरी दीवार खराब हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। मैंने इसको कहा कि तुम अपना ये एक दरख्त मुझे दे दो, तुम्हारे पास इतने क्या फर्क पड़ता है। इसने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर तुम ऐसा करो कि इस दरख्त की जो कीमत बनती है वो ले लो मुझसे। इसने कहा मैं वो भी नहीं दूंगा, तो आप हमारा मुकदमा हल करें। आप जरा इमेजिन कर रहे हैं, आप सिर्फ एक दरख्त है खजूर का और उसकी वजह से वो शख्स पीछे हो रहा है। नबी सल्लम ने उस हमसाये से पूछा कि जो बात इसने कही है वो ठीक है, दूसरे की भी सुननी चाहिए। उसने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है बात, लेकिन मेरा नहीं दिल कर रहा इसको देने को। आपने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें इस दरख्त के बदले जन्नत में एक दरख्त मिल जाए तो फिर भी नहीं दोगे? कहने लगा फायदे का सौदा है, पर मैं फिर भी नहीं दूंगा, मैं अपना बाग खराब नहीं करना चाहता। सहाबा ये बातें सुन रहे थे, उनको उस शख्स पे बड़ा गुस्सा आया, कितना बेवकूफ है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है बदले में और इधर एक दरख्त नहीं छोड़ा। सहाबा में से एक सहाबी अबू दहदा बैठे थे, खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर ये दरख्त मैं खरीद लूं और मैं अपनी तरफ से इस बच्चे को दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत में एक दरख्त मिलेगा? आपने फरमाया हाँ तुम्हें भी मिलेगा। ये वापस गए उस हमसाये के पास, कहने लगे तुमने मेरे बाग का जिक्र सुना है कभी? तो वो कहने लगा तुम्हारे बाग को कौन नहीं जानता, मदीना का सबसे बड़ा बाग, 600 खजूरों के दरख्त हैं और उसमें उनका महल भी था, मीठे पानी का कुआं भी था, चारों तरफ दरख्तों की बाड़ भी लगी थी, यानी द बेस्ट काइंड ऑफ दी गार्डन। कहने का सबको पता है। कहने लगे कि अगर मैं तुझे अपना वो पूरा बाग दे दूं तो उसके बदले में ये एक दरख्त छोड़ दोगे? तो जो हमसाया था ना, उसको यकीन नहीं आया कि ये कैसी बात कर रहा है। बेयकीनी से कहने का ये मुमकिन है? उसने कहा मुमकिन है, क्योंकि मैंने जन्नत में एक दरख्त लेना है। उसने कहा मुझे और क्या चाहिए? उसने वो सौदा किया, वो एक दरख्त उसको दे दिया। ये खुशी खुशी नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, अब मुझे जन्नत में एक दरख्त मिल गया ना? तो आपने कहा नहीं, तुझे तो नहीं मिला। कहा अल्लाह के नबी मुझे नहीं मिला? फिर आपने कहा कि अबू दहदा, अल्लाह तो तुझे सिर्फ एक दरख्त के बदले में एक दरख्त दे रहा था, तूने तो 600 दरख्तों वाला बाग और ये वो दिया, तेरे लिए जन्नत में एक नहीं, 600 जन्नत के बाग और दरख्त और वो गिनाई, तेरे लिए तो वो तैयार किया अल्लाह ने। कहते हैं उछलते कूदते यहां से घर गए, बीवी को बाद या उम्मे दहदा, दहदा बेटा था, ये बाप थे तो वो माँ थी, या उम्मे दहदा, या उम्मे दहदा, उखरजी उखरजी, बाहरा बाहरा। का क्या हुआ? कहने लगे मैंने ये बाग बेच दिए। अच्छा, बीवी को ये पता था कि मेरे शौहर बहुत अच्छा कारोबारी शख्स है, कोई बेवकूफी के फैसले नहीं करता? कहने लगी बहुत नफे का सौदा किया होगा। कहने लगी कितने का बेचा है? कहने लगे कि इस एक बाग के बदले में जन्नत में हमें ऐसा ही बाग और इससे ही अच्छा महल और वो सब मिलेगा। दूसरा जवाब नहीं पूछा। बीवी कहने लगी कि या अबू दहदा, ए अबू दहदा, तूने नफे का सौदा किया। और वहां से निकले, घर छोड़ना पड़ा सब कुछ, बच्चे के हाथ में खजूर थी, तो कहा बेटा ये खजूर आप फेंक दो क्योंकि ये बाग हमने अल्लाह को दे दिया। अब मुझे बताइए कि क्या ये लोग ना समझते? कमा मनस सुफहा, सहावा को क्या लोग कहते थे? बेवकूफ, जज्बाती हैं, ये बातों में आ जाते हैं, ये इमोशनल बहुत हैं, टांगे खींचते थे, आप क्यों इतना देते हैं? ये आपको हर मौके पे सोचती है, आप देते हैं फिर हमें भी देना पड़ता है, आपको बहुत शौक है देने का, फिर हम ना दें तो हम बुरे लगते हैं। ये तो अंदर के सौदे हैं, किसी के लिए अल्लाह इतना आसान कर देता है, उसको ऐसे ही लगता है जैसे बस एक नैपकिन यूज किया और फेंक दिया, और कुछ के दिल पे हाथ पड़ता है एक नोट निकालते हुए। फर्क किस बात का है? कि अंदर तज़किया नहीं हुआ। वाह, जितना बंदे का दिल खुलेगा अल्लाह के लिए, देखिए क्लॉग आ जाता है ना, आपने कभी गटर देखे होंगे या सिंक की पाइप बंद हो जाती है, आप कहते पानी नहीं जा रहा, रुक रुक जा रहा है, अब आप टूटी खोलते हुए भी डरते हैं कि पानी जमा हो रहा है, तो फायदा तो नहीं आपको देगा, नुकसान होगा ना। आप किसी अक्लमंद को बुलाते हैं, वो कहता है ठहरो, वो अंदर कुछ पिन डालता है, कोई ड्रॉप डालता है, कोई ऐसा ड्रेन ओपनर डाला, थोड़ी देर में वो सारा पानी फरफर निकला। अब आप जितना मर्जी टूटी खोलें, पानी जा रहा है ना। आप इसको इमेजिन करें कि वो टूटी से पानी नहीं निकल रहा, दौलत है, हर बंदा चाहता है उसकी दौलत खुली हो। जब नीचे क्लॉग आ जाता है ना, ढक्कन बंद कड़क कड़क, तो वो दौलत रुकने लगती है, ज्यादा आएगी तो बाहर गिरेगी। आप देते जाएं, अनफिक यूनफक के लाइक, आप खर्च करें ऊपर से और आ जाएगा। जब आप टूटी खोलते हैं आपको याद भी नहीं रहता कितना पानी गिर गया, और जब जमा हो जाए या किसी जगह से उठा के फेंकना पड़े फिर समझ आता है कि इतना पानी हमने यूज किया। तो अल्लाह से और लेने का तरीका, पहले दिए को अल्लाह के रस्तों में खोल दो, और ये बात जब समझ आ जाती है ना तो खुबे माल निकल जाती है। जब मेरा अल्लाह मेरी सारी ज़रूरतें जो पूरी कर रहा है, हमने अपने 5 साल मनसूबों के लिए जमा किया होता है और आज की ज़रूरत हमें नहीं दिख रही होती, बच्चों के मुस्तकबिल, शादियों के लिए, रमज़ान के लिए, हज के लिए, और बेड के लिए, और किस के लिए, घरों के लिए जमा किया होता है, जो भी शायद ज़रूरतें पड़नी भी हैं कि नहीं। लेकिन जब दिल में अल्लाह जो दे दिया, चाहिए थी मिल गई ना, अब मैं कौन, ये पत्ती संभाल दो, शायद 6 माह बाद मेरे सर में दर्द हुआ तो मुझे चाय पीनी पड़ेगी, तो मैं इस पत्ती को संभालती रहूं संभालती रहूं, हो सकता है 6 माह मैंने जीना भी नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपका रब आपकी ज़रूरतें आज की पूरी कर रहा है ना, कल की भी करेगा। इस तरह से फिर आप हुब्बे माल का इलाज करें। अबू ज़र गफ़ारी को किसी ने कहा था कि आपके घर में सामान ही नहीं है, कहते हैं अगले घर भेज दिया, दूसरे घर भेजा है, कहा अच्छा इधर भी तोड़ा रखते, कहते यहाँ का मालिक रखने ही नहीं देता, और हमारा अपनी ज़ात के बारे में हम कितने कॉन्शियस हैं। अल्लाह अकबर, ये पसंद नहीं है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरे मैच नहीं करता, ये रंग अच्छा नहीं, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं, ये मेरे मिजाज से मैच नहीं करता, लखलोट बन के हम अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं। लेकिन माल की मोहब्बत दिल से जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको अपनी ज़ात पे लगाना लगता है, और यकीन करें जब आप अपने ऊपर लगाना छोड़ते हैं ना, तभी तो आपको मिलता है, फिर वो आपके पास वो कुछ होता है जो आप कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि आप तो अपने दिल से लेंगे ना, अल्लाह आपको अपनी शान से देता है। तो लिहाजा दूसरी बुराई हुब्बे माल भी ख़त्म कब हो जाएगी? जब हम अपने दिल से ये चीज़ें निकाल देंगे। फिर एक बुराई रह गई, उसका कल इलाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। सोच के आइएगा झूठ का क्या इलाज है, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।